शक्तिमान। हम भी चले तुम भी चलो, चलता रहे कारवां, वो जिंदगी हर खुशनुमा, सुख में बने तारा जहां, तारा जहां।
नमस्कार, ओम शांति। विंग्स ऑफ ब्रह्मा कुमारी के इस एपिसोड में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज का जो विषय है बहुत इंटरेस्टिंग है। जब भी हम कभी बीमार पड़ते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वो डॉक्टर हमें खाने के लिए ढेर सारी दवाइयां दे देता है। कई बार मन भी नहीं करता, मूड भी नहीं करता कि हम इतनी सारी दवाइयां खाएं, लेकिन खुद को ठीक करने के लिए वो दवाइयां हमें खानी पड़ती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, यदि दवाई लेने के साथ साथ यदि मैं एक या दो मिनट मेडिटेशन कर लेता हूं तो मेरे रिकवरी प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाती है। मेडिटेशन एज मेडिसिन, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे बीच में मौजूद है ब्रह्मा कुमारीज के मेडिकल विंग के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी डॉक्टर बनारसी भाई। भाई साहब, आपका आज इस एपिसोड में मैं एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो जैसे कि आज का जो हमारा विषय है अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है कि मेडिटेशन से भी डिजीजेस ठीक हो सकते हैं।
मेडिटेशन एक बहुत बड़ी टेक्निक है और मेडिटेशन से बीमारियां ठीक होती है, दुनिया की भी मान्यता है और हम लोगों ने मेडिकल विंग में रिसर्च करके देखा है कि मेडिटेशन से अनेक प्रकार की बीमारियां ठीक होती है। 3000 के लगभग हमारे मेडिकल विंग के मेंबर्स हमारे डॉक्टर हैं। एक डॉक्टर ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में बहन है, वो एनेस्थेसिया का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है
जी।
उसने देखा है कि जो पेशेंट को एनेस्थेसिया देती है, एनेस्थेसिया देने के बाईपास सर्जरी के लिए, तो बाईपास सर्जरी के पहले उसको मेडिटेशन, दो दिन पहले एडमिट होता है पेशेंट, दो दिन पहले उसको मेडिटेशन कराती है और दूसरे पेशेंट को मेडिटेशन नहीं कराती है। तो दोनों में ये अंतर पाती है कि जिसको मेडिटेशन करा करके एनेस्थेसिया दिया है उसका रिकवरी बहुत फास्ट होता है
जी।
तो ये एक ही जगह का नहीं है, हमारे यहाँ हेडक्वार्टर में डॉक्टर सतीश गुप्ता
जी,
वो कैट के प्रोग्राम करते हैं। मैं मान रहा हूँ कि आज 10-12 साल हो गया उनको रिसर्च करते हुए, पेपर इनका प्रेजेंट हुआ है और 10,000 पेशेंट पर उन्होंने रिसर्च किया है कि जिसकी आर्टरी ब्लॉक हो गई है, आज पेशेंट घर से गया है पैदल रिक्शा में, गाड़ी चला करके गया है अपना एंजियोग्राफी कराने के लिए, कैथ लैब में गया, डॉक्टर एंजियोग्राफी करके उसको बोलता है पेशेंट को कि भाई आपकी आर्टरी 100% ब्लॉक है, आप पैदल जाएंगे, पैदल करेंगे तो कभी भी एनी टाइम आपको हार्ट अटैक होगा और आप ऊपर चले जाएंगे। जो व्यक्ति घर का नॉर्मल काम करता था, ऑफिस का नॉर्मल काम करता था, गाड़ी चला करके उसको चेस्ट पेन हुआ और उसको शक को मिटाने के लिए कैथ लैब में जाकर के एंजियोग्राफी कराया, डॉक्टर ने कहा कि आपका आर्टरी 100% ब्लॉक है पर एनी टाइम आपको हार्ट अटैक हो जाएगा, तो वो बातें सुनकर के वो डिप्रेशन में चला गया। वही व्यक्ति कैथ लैब में लेटने समय टेबल पर उसको 100% आर्टरी ब्लॉक नहीं हुई है, महीनों से वर्षों से धीरे धीरे ब्लॉक होते होते वहां तक पहुंची है, लेकिन डॉक्टर ने बोल दिया कि 100% ब्लॉक है और आपका एनी टाइम हार्ट अटैक होगा, आपकी डेथ हो जाएगी
जी।
तो डिप्रेशन में चला गया। वही व्यक्ति अगर वो डॉक्टर की बात सुन करके मनोबल बढ़ाता कि भाई मैं तो नॉर्मल काम करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं गाड़ी चला कर आया हूँ, यहाँ आकर के हमारा 100% ब्लॉक नहीं है, पहले से 100% ब्लॉक है, अभी जानकारी मुझे हुई है, तो मैं इसको ठीक करने के लिए कुछ एक्सरसाइज करूँ, कुछ मेडिटेशन करूँ, कई विधियां हैं इसको आर्टरी को खोलने के लिए, वो अपनाऊ, तो उसको वो चीज नहीं सूझता है। अब वो कैथ लैब में टेबल से उठता नहीं है, भाई मेरा आर्टरी 100% ब्लॉक है, मैं कैसे उठ सकता हूँ, कैसे टेबल से नीचे उतर सकता हूँ, उसको वार्ड बॉय उसको उतारते हैं, उसको कुर्सी पर बैठा, व्हील चेयर पर बैठा करके बाहर लाते हैं, दो लोग पकड़ करके उसको कार में बैठाते हैं, अरे वही व्यक्ति कार चला के गया है, ऐसा क्या बात हो गई। तो ये देखा गया कि वो डिप्रेशन में चला गया, तो उस डिप्रेशन से बाहर लाने के लिए हमने अपने आंखों से देखा है, कई ग्रुप मैंने अटेंड भी किया है कि ऐसे पेशेंट को मेडिटेशन सिखाते हैं, कुछ नहीं, उनके दवाइयां हम बंद नहीं करते हैं, मेडिटेशन ऐड करते हैं, उनके लाइफ स्टाइल चेंज करते हैं, उनको काउंसलिंग करके उनकी सारी बातों को जानकारी लेते हैं कि आखिर ब्लॉक हुआ कैसे
जी?
क्या कारण है कि आर्टरी ब्लॉक हुआ। जब उनके कारण को सुनते हैं कि आपसे ये स्ट्रेस हुआ, भाई भाई में स्ट्रेस हुआ, बिजनेस में कुछ घाटा आया, स्ट्रेस हुआ, बच्चे पढ़ाई में कई प्रॉब्लम, सामाजिक प्रॉब्लम है जिसको हम कितना वर्णन करें, तो कोई भी कारण से उसको स्ट्रेस हुआ और वो धीरे धीरे आर्टरी ब्लॉक होने लगी, एचडीएल एलडीएल ट्राइग्लिसराइड बढ़ने लगा। तो उसके पहले तो लोगों को जानकारी नहीं होती थी, आजकल तो अवेयरनेस है, लोग अपना बॉडी चेकअप कराते रहते हैं, एचडीएल एलडीएल ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल वो चेक कराते रहते हैं और उस अनुसार अपने रूटीन को मेंटेन करते हैं। लेकिन पहले या गांव में भी अभी तक अवेयरनेस कम है, ये तो नहीं कह सकते कि गांव में नहीं है, है लेकिन कम है, जो शहर के अपेक्षा कम है। लेकिन हम ये देखते हैं कि गरीबों में जहां रोजी रोटी की सवाल है, वो पैसे उनके पास इतना नहीं है, आज चेकिंग की कॉस्ट बढ़ती जा रही है, काफी कॉस्टली हो गई है, तो बेचारे भी जानने के बावजूद भी वो नहीं करा पाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आर्टरी केवल खाने से ब्लॉक हुई है, आर्टरी स्ट्रेस से ब्लॉक होती है, ऐसे एंजाइम्स अंदर से निकलते हैं जो वो ब्लॉकेज पैदा करते हैं, वो खून को गाढ़ा करते हैं और वो धीरे धीरे ब्लॉक होना शुरू करता है।
ये जो एंजाइम्स का सिक्रेशन है, मुझे लगता है ये इसका रीजन नेगेटिव थिंकिंग स्ट्रेस,
नेगेटिव थिंकिंग डिप्रेशन और हमारे बैड हैबिट्स पर भी ये करता है। मान लीजिए कि हम बहुत अच्छी चीज घी तेल या मलाई या मक्खन बटर नहीं लेते हैं, लेकिन अगर स्ट्रेस करते हैं, हम शराब पीते हैं, हम सिगरेट पीते हैं, क्योंकि उसमें निकोटीन होता है
जी।
और वो निकोटीन हमारे अंदर जाता है तो आर्टरी को वो सिकुड़ना शुरू करता है, ब्रेन की आर्टरी सिकुड़ना शुरू कर जाती है, तो वो एक टाइम आता है कि उसमें से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है, और जब ब्लड सप्लाई नहीं होता है, स्पाजम हो जाती है, तो वहाँ हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाता है। तो ऐसे लोगों को हम मेडिटेशन सिखाते हैं और वो हमारे इस मेडिटेशन में कोई धर्म कास्ट कोई भाषा जाति का कोई लेनी देनी नहीं है, एक प्रकार की टेक्निक है, कोई भी कर सकता है, छोटा भी कर सकता है, बड़ा भी कर सकता है, किसी भी सेक्ट का कर सकता है, ये टेक्निक है। जैसे आज साइकिल चलाना है, कार चलानी है, तो ये कहाँ भी नहीं लाइसेंस में लिखा है कि ये फलाने वर्ग के लोग ही चला सकते हैं, कहाँ भी नहीं लिखा है। कोई भी वो टेक्निक अपनाएगा और शुरू कर देगा, चलाना शुरू करेगा, तो उसी तरह ये मेडिटेशन है।
ये मेडिटेशन में ऐसा क्या चीज है जो हमारी बॉडी में हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होने लग जाती है, ऐसा क्या होता है इसके अंदर?
कोई हम फिजिकल एक्सरसाइज को मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, दुनिया में फिजिकल एक्सरसाइज को मेडिटेशन करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारी मेडिटेशन है वो आत्मा और परमात्मा से है। हम आत्मा हैं, आत्मा का गुण हम अब विस्तार में नहीं जाएंगे, आपने कहीं सुना होगा, देखा होगा, नहीं तो जाकर के देख सकते हैं। तो हम आत्मा शांत स्वरूप हैं, तो हम अपने स्वरूप में टिकना शुरू करते हैं
जी,
स्थित होना शुरू करते हैं। जितना जितना स्वरूप में स्थित होते हैं तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, तो हमारा कर्म इंद्रियां, हमारी आर्टरी, हमारी सेल टिश्यू शीतल होना शुरू हो जाती है, स्ट्रेस निकल जाता है, खत्म हो जाता है। जैसे किसी का फादर क्रोधी हो और घर में आकर के बहुत घमासान करे, तो बच्चे जब भी फादर वो घर में आएगा तो छुप जाएंगे, डर से ये हो जाएंगे, उनकी नॉर्मल रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है। फादर है लेकिन उसका संस्कार है, क्या कर सकते हैं। तो इसलिए वो हमारे शरीर में आत्मा का रोल है कि वो शांति, खुशी, पवित्रता, ये सब उसका ये गुण है। तो वो गुण हम अपनाते हैं, हमारे अंदर जब हमारे शरीर में वो फैलता है तो कई डिजीज अपने आप धीरे धीरे रिकवरी होने लगती है। स्ट्रेस में है लेकिन धीरे धीरे मेडिटेशन करने से स्ट्रेस खत्म हो जाता है। मेडिटेशन से ये होता है कि हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती है, हमारी जीवन शैली पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। वही व्यक्ति आज शराब पी रहा था, वही व्यक्ति अगर मेडिटेशन करता है तो उसको पहले आएगा कि नहीं हम तो देवता थे, ये भारत देव भूमि था तो हमको ये काम नहीं करना है। अब वहाँ से विचार आ रहा है उसको,
मतलब मैं अपने संस्कार को मैच कर रहा हूँ।
पहले हमारा वो संस्कार था खाओ पियो मौज करो, जो भी आए वो खा लिया। अब हम मेडिटेशन करते हैं तो कहते हैं कि नहीं ये हमारा आहार नहीं है। तो हम सात्विक चीज की तरफ जाते हैं क्योंकि बुद्धि हमारे सात्विक बनानी है, आत्मा को जो तमो प्रधान बन गई है उसको सतो प्रधान बनाना है। तो हम जितनी जितनी सात्विक चीज को अपनाते हैं, सात्विक चीज को लेते हैं तो हमारी आत्मा में बल बढ़ता है। ये हमको पहले लोगों ने सिखाया नहीं। पहले शिव मंदिर में हम जाते थे, पंडित जी हमारे बड़े वो कहते थे भाई मेडिटेशन मंदिर में बैठ के करो, लेकिन वहाँ क्या सिखाया गया भाई, मंदिर में गए तिलक लगाए सोल कॉन्शियस हो गए। अरे बुद्धि हमारी बिजनेस में चल रही है, बुद्धि हमारी
बिल्कुल माइंड डाइवर्टेड
रहता है। हाँ, लेकिन हम घंटों मंदिर में बैठे हैं तो मेडिटेशन नहीं है। लेकिन यहाँ हम मेडिटेशन जो यहाँ सिखाया जाता है कि आप अपने बिजनेस में रहिए, दो मिनट अगर फुर्सत है, ग्राहक नहीं है तो अपने को सोल कॉन्शियस में अपने को आत्मा समझ करके दो मिनट बैठेंगे तो रिलैक्सेशन मिलेगा। दो मिनट हम परमात्मा को याद करेंगे। अब परमात्मा को याद करने के लिए हमको मंदिर या गुरुद्वारा या मस्जिद ही में जाना जरूरी नहीं है। ये हमको रियलाइज हो गई है कि नहीं हमारा पिता परमात्मा है, हम उनके बच्चे हैं, तो परमात्मा को तो कहाँ भी याद कर सकते हैं। जैसे अभी हम अपने लौकिक फादर को याद करें तो
कहीं पर भी कर सकते हैं।
जरूरी नहीं है कि उनके
घर में ही याद करेंगे।
हाँ, उनके पास जाकर के ही याद करें या उनका फोटो सामने रख करके ही याद करें, ऐसी बात नहीं है। उसी तरह हमारा पिता परमात्मा है, हम मानते हैं, दुनिया मानती है परमात्मा हमारा पिता है, तो उसे हमारे रिलेशन होना चाहिए और उस रिलेशन के आधार से हम उसे सुख शांति पवित्रता अपने जीवन में लाते हैं, बहुत सारी बीमारियां ऑटोमेटिक हील होना शुरू हो जाती
है। एक मेरे जहन में एक प्रश्न और आ रहा है कि ये तो हुआ कि हम स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं, अपने लिए करना, लेकिन एक व्यक्ति मान लीजिए वो कोमा में पड़ा है, वो बिल्कुल बेहोश है, उसको अपनी सद्बुद्धि नहीं है, तो क्या ऐसे व्यक्ति के लिए हम कुछ मेडिटेशन कर सकते हैं?
वो व्यक्ति कोमा में है लेकिन कोमा में जन्म से नहीं है, वो काम करते करते बीमार हुआ और अचानक शरीर में हो गई कि कोमा में चला गया, लेकिन हुई बीमारी हुई तो तब तक वो होश में था, कोमा में जाने के पहले भी वो होश में था, तो उसको क्या याद आता था? बीमारी का कारण याद आता था कि हमारे को घाटा हो गई है, बिजनेस में घाटा, बच्चे ने नुकसान कर दिया है, भाई ने धोखा दे दिया है, वाइफ ने हमको हमारे साथ ये किया है, जिसके कारण डिजीज हुआ, जिसके कारण डिप्रेशन में गया, जिसके कारण बीमारी होने के कारण वो कोमा में गया, तो उसकी बातें उसको वो माइंड पर वो आत्मा पर वो घूम रही है। ऐसे टाइम पर हम वाइब्रेशन देंगे तो उसके ऊपर असर पड़ता है और पड़ेगा
जी।
जैसे कि आप अभी के हम बात नहीं कर रहे हैं, पहले के संत लोग होते थे, महात्मा लोग होते थे, वो मेडिटेशन करते थे, हिंसक प्राणी उनके आश्रम में आकर के शेर चीते उनके पास आकर के बैठ जाते थे।
हाँ, कुछ अटैक नहीं करते थे,
अटैक नहीं करते थे, अपनी हिंसा भूल जाते थे। हिंसक खूंखार जानवर अपनी हिंसा भूल सकता है, तो एक ह्यूमन अगर हम सच्ची दिल से भगवान को याद करके प्रेयर करके योग करके मेडिटेशन करके उनको वाइब्रेशन देंगे तो उसके ऊपर वो असर पड़ेगा। हमने देखा भी है, अगर हम शुभ भावना रखते हैं, जैसे कोई भी बीमारी अगर हम सबको होती है, अगर हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ संस्था में डॉक्टर भी मानते हैं कि आपके पेशेंट जो आते हैं उनको पता ही नहीं लगता है कि बीमार कौन है। दुनिया में बीमार के लोग रिलेटिव लेकर आते हैं, वो लोग भी दो चार लोग आते हैं साथ में, लेकिन पता लग जाता है ये व्यक्ति बीमार है,
चेहरे से मालूम हो जाता है।
आपके लोगों में पता नहीं लगता है इसमें बीमार कौन व्यक्ति है, किसको हमको इलाज करना है, उसको पूछना पड़ता है। कारण कारण ये कि वो मेडिटेशन करता है, उसका चेहरा खिला रहता है, उसको पता है ये बीमारी आई है ये जाएगी। हमारा कनेक्शन परमात्मा से है, शिव बाबा से है, तो हमको निश्चिंत लाइफ है कि नहीं सुप्रीम सर्जन बैठा है, उसके होते कुछ नुकसान हो ही नहीं सकता। अगर ये हम सबको विश्वास हो जाए कि हमारा पिता परमात्मा है, वो सुप्रीम सर्जन है, तो बीमारी आती है और चली जाती है। बीमारी आती है, आने के पहले हम हाय तोबा मचाते हैं, इतनी बीमारी आती है, हम स्ट्रेस से, भय से, चिंता से उसको इतना बना देते हैं, तो उसका इफेक्ट हमारे शरीर
पर, हम भगवान को ही कोसने लग जाते हैं। हाँ। कि भगवान तूने मुझे ऐसी बीमारी क्यों दे दी,
क्यों दे दिया,
तूने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, मैंने क्या बिगाड़ा था। ऐसे लोगों की नेगेटिव थिंकिंग होने लग जाती है। और कई लोग ऐसे भी हैं जिनको ये पता लग जाता है कि आपको कैंसर है, आपको इतनी बड़ी बीमारी हो गई है, तो वो उसी टाइम ही शायद उनकी बीमारी इतनी नहीं भी होगी, वो सोच सोच करके और बढ़ने लग जाते हैं। तो ऐसे में इंसान क्या करे जब उसको पता लगे। कई ऐसे भी हमने एग्जांपल देखे हैं जब लोगों को ये पता लगा कि आपका आपको कैंसर हुआ है, बस आप 2 महीने तक जिएंगे। लेकिन कई ऐसे एग्जांपल भी हैं जिनको पता लगने के बावजूद भी डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, लेकिन फिर भी वो उभर गए, उनकी डेथ नहीं हुई। तो इसके पीछे क्या कारण है?
इसके पीछे मेडिटेशन तो मेन रोल है, और अपनी थॉट्स क्रिया, जो हमारे थॉट्स प्रोसेस है, उसको इम्पोर्टेंस देना है
जी।
एक रिसर्च पेपर में आया था कि एक लेडीज थी, वो उसको कैंसर हो गया, डॉक्टर ने कह दिया कि तुम 6 महीना से अधिक नहीं बचेगी, लेकिन उसको ये था नहीं हम अपने बच्चे को पढ़ाऊंगी, पढ़ा करके इसको मैरिज करके फिर मैं जाऊंगी, नहीं तो उसका फादर नहीं था, उसी के ऊपर माँ के ऊपर डिपेंड था बच्चा, और बच्चे से उसका बहुत प्यार था, बहुत लगाव था, नेचुरली होता है एक माँ को बच्चे से, लेकिन उसको इतना विल पावर था नहीं मैं ठीक होंगी होंगी, तो वो धीरे धीरे उस विल पावर से ठीक होना शुरू कर दिया।
राइट,
ठीक हो गई। डॉक्टर ने बोला कि 2 महीने में जाएगी, और 2 महीने में तो ठीक होकर के घर चली गई। विल पावर के कारण ऐसा व्यक्ति कोई भी दुनिया में ढूंढ करके आइए कि जिसको बीमारी नहीं हो, लेकिन कोई किसी को किस रूप से रिसीव करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है।
राइट,
मेहमान हर व्यक्ति के घर में आते हैं, लेकिन उस मेहमान को हमने कैसे रिसीव किया उस पर डिपेंड करता है। तो बीमारी एक मेहमान है, किसी को वो आ सकता है, कि बिना बताए आ सकता है, अनजान में भी आ सकता है, लेकिन बड़े धैर्यता से बीमारी आई, अब उसमें हम ईश्वर का सहारा लें। ठीक है, आई है, कोई भी चीज आता है रुकता नहीं, हो चला जाता है, आज दिन हुआ है, रात होने वाली है, दोपहर होने वाला है, तो उसी तरह बीमारी आई है, बीमारी में हम पॉजिटिव थिंकिंग करें, वो धीरे धीरे उसको हीलिंग की तरफ ले जाएगा, और उस बीमारी से वो छुटकारा।
बिल्कुल, मुझे याद भी आ रहा है कि जब कभी कोई बहुत बीमार हो जाता है तो अक्सर करके डॉक्टर्स भी यही बोलते हैं कि अब दवा का काम तो हमने कर दिया, आप दुआ करो।
हाँ।
ये बात कही जाती है, और ये बहुत अच्छी आपने बात बताई कि भगवान को एज डॉक्टर के रूप में हम देखें और उसी रूप में हम उसको याद करें। और जो आपने ये बताया कि सकारात्मक हमें सोचना है, तो उस सकारात्मक सोचने में मैं किस प्रकार के थॉट्स क्रिएट करूं, क्या सोचूं मैं जिसकी वजह से मुझे तनाव अनुभव हो रहा है, तो उससे मैं उभर सकता हूं।
अब यहाँ मेडिटेशन का हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे कि देखिए शरीर नश्वर है, रोग नश्वर है, शरीर को रोग लगा है, आत्मा को रोग नहीं लगी है, तो हम अब अपने को आत्मा समझ करके शरीर से परे हो जाएं, थोड़ा सा डिटैच हो, और हम मेडिटेशन करें और परमात्मा से शक्ति लेकर के उसको शकास दें, वाइब्रेशन दें,
जहाँ पर मुझे रोग हुआ है,
जहाँ पर रोग हुआ है भाई, ये ठीक हो रहा है, मेरे उंगली में दर्द है या उंगली में पीड़ा है, तो हम इस उंगली को शकास दें, परमात्मा के बुद्धि हमारे परमात्मा में हो, पावर शक्ति हम परमात्मा से ग्रहण करें और इसको शकास दें, तो शकास से ये जल्दी हीलिंग इसमें शुरू हो जाएगा, और एक दिन आएगा कि उंगली हमारी एकदम 100% ठीक हो जाएगी। तो मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल है डिजीज में। मेडिटेशन कहाँ अच्छा लगता है? बेडरूम में नहीं अच्छा लगता है, थोड़ा बेडरूम से बाहर निकल जाए, अपने बालकोनी में चले जाएं, अगर बालकोनी में भी बहुत सारी चीजें हैं तो अब छत पर चले जाएं, वहां भी बहुत सारी चीज है, थोड़े बगीचे में चले जाए। तो इससे क्या हुआ, उसका वाक भी शुरू हुआ, प्रकृति से डायरेक्ट एनर्जी भी मिलने शुरू हुई और उसका परमात्मा से बुद्धि योग लगा तो परमात्मा से भी ताकत मिल रही है। इसीलिए बड़े बड़े जो संत होते थे वो कभी हॉस्पिटल में नहीं दिखाया जाता था,
इवन पुराने जमाने के लोग भी नहीं जाते।
हाँ, पुराने जमाने के या गांव के लोग भी वो हॉस्पिटल नहीं जाते थे क्योंकि नेचर से अपने को रिलेट करते थे, नेचर में रहते थे। आजकल के लोग शहरों में रहना पसंद करते हैं, वहाँ आर्टिफिशियल लाइफ है, आर्टिफिशियल सब कुछ है, खाने में भी सब कुछ आर्टिफिशियल है। आज गांव में लोग, शहरों के बनिस्पत गांव के लोग कम बीमार होते हैं, उनको शहर में लोग रोज ब्लड प्रेशर दिखाते हैं, गांव के लोगों को पता ही नहीं होता है कि ब्लड प्रेशर है क्या चीज, गांव के लोगों को पता नहीं होता है कि डायबिटीज है क्या चीज। यहाँ हर रोज डायबिटीज चेक करते रहेंगे, नहीं तो हॉस्पिटल में जाकर डायबिटीज चेक कराते रहेंगे। वो काम करते हैं, वो निश्चिंत रहते हैं, मेहनत करते हैं और उसके फल से वो स्वस्थ रहते हैं।
मेरा आपसे ये प्रश्न है कि जैसे आपने बीपी और डायबिटीज का जिक्र किया और हमारे देश के अंदर लगभग दूसरे तीसरे व्यक्ति को डायबिटीज है और ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम भी है, चाहे वो हाई बीपी है लो बीपी है, तो क्या मेडिटेशन से ये रोग भी ठीक हो सकता है?
मेडिटेशन से हाई बीपी और डायबिटीज पर बहुत अच्छा असर हुआ है। मेडिटेशन से डायबिटीज को देखा गया कि क्यों होता है, एंजाइटी से, खाने से जितना शुगर नहीं बढ़ता है उतना एंजाइटी से बढ़ता है। आज क्रोधी व्यक्ति है, वो क्रोध में जब आता है तो उसका इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, पैंक्रियाज काम करना कम हो जाती है, तो वो व्यक्ति का डायबिटीज हो जाता है। अभी शहरों में देखते हैं कि कदम कदम पर स्ट्रेस है, भाई हम मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, लाल लाइट आ गई और वहाँ रुकना पड़ा, मुझे बहुत अर्जेंट जाना है, तो रुके तो हैं, नियम डिसिप्लिन में रहना है, लेकिन बुद्धि तो फास्ट चल रही है, बुद्धि तो रेड क्रॉस पर रुकी नहीं है। डायबिटीज उनको भी गांव में भी होती है, मैं देखता हूँ कि अभी पहले नहीं था, वहाँ भी पहुँच गई है, लेकिन वहाँ भी अब धीरे धीरे पॉलिटिक्स, धीरे धीरे स्ट्रेस, धीरे धीरे और भी गांव के भी वातावरण दूषित होते जा रहा है, इसके कारण गांव में भी बीमारियां बढ़ती जा रही है। लेकिन पहले गांव में इतनी बीमारियां नहीं थी, पहले का हाइजीन बहुत अच्छा था, इतनी गंदगी नहीं होती थी, इतनी पॉल्यूशन नहीं होता था, इतनी फैक्ट्री नहीं होती थी, तो लोग गांव में बड़े नेचुरल लाइफ। आज विटामिन डी की गोली ले रहे हैं लेकिन सन में वो कहें कि भाई सनलाइट में जाइए तो उनके पास फुर्सत नहीं है कि सूर्योदय हो और दो मिनट जाकर के मैं बैठूं। तो ये अननेचुरल लाइफ होने से आज बीमारियां बढ़ रही है। अब हम लोगों को नेचुरल लाइफ अगर व्यतीत करेंगे तो इन बीमारियों से छुटकारा मिलेगी।
यदि मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम भी है, बीपी है, डायबिटीज है या ऐसे कोई भी शरीर में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मेरा पूरा दिनचर्या किस हिसाब से होना चाहिए, मुझे मेडिटेशन के लिए कितना टाइम निकालना चाहिए और जो भी मेरा रूटीन वर्क है उसको मुझे कैसे सेटअप करना चाहिए?
मेडिटेशन के लिए अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है, आप मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग उठने का प्रयास करते हैं, मेडिटेशन वही करता है जो अर्ली मॉर्निंग उठता है
जी।
तो अर्ली मॉर्निंग उठ करके आप अभ्यास करते हैं, लोगों की लाइफ स्टाइल क्या हुई है, 7 बजे उठते हैं, 7:30 8 बजे
उठते हैं,
9 बजे उठते हैं और उठते घड़ी देखेंगे भाई हमको ऑफिस जाना है, 10 बजे ऑफिस जाना है, तो फटाफट सब काम करते हैं। जो व्यक्ति 4 बजे उठा है, जो व्यक्ति 5 बजे उठा है और 5 बजे से आधा घंटा मेडिटेशन किया है, तो उसको क्या महसूसता हुई है, रिलैक्सेशन कितना मिली है, परमात्मा से शक्ति कितना रिसीव किया है, उसी शक्ति के आधार पर अपनी सारे दिन की दिनचर्या वो शुरू कर देता है, उसी शक्ति के आधार पर दिनचर्या वो चलाता है। तो उसके बुद्धि में क्या रहता है कि भाई जो चीज आया है वो जाएगा, अब हमको इसमें अधीर नहीं होना है, इसमें घबराना नहीं है, इसमें टेंस में नहीं आना है, इसमें डिप्रेशन में मुझे नहीं जानी है, आया है जाएगा, हमारा साथी, हमारा सहारा, हमारा संबंध परमात्मा से है, तो हम निरंतर हम पॉजिटिव थिंकिंग करें, शरीर से अलग रहें। शरीर से अलग रहने का ये नहीं है कि शरीर यहाँ छोड़ करके और हम ऑफिस में चले गए, नहीं, शरीर तो जहाँ रहेंगे साथ रहेगा, लेकिन विचारों से महसूसता से शरीर से हम डिटैच रहें, शरीर हमको न खींचे, शरीर को हम चलाएं। तो इसलिए बीमारी हुई है तो उस बीमारी को वो हम शरीर को हुई है तो हम शरीर को भूलने का हमारा अभ्यास रहेगा तो धीरे धीरे बीमारी भूलती जाएगी। और हम मेडिटेशन करेंगे तो मेडिटेशन से पावर मिलेगा, पॉजिटिव पावर मिलेगा, शक्ति मिलेगी। इस प्रकार की शक्ति मिलेगी कि वो धीरे धीरे जो दवाई नहीं काम कर रही है वो मेडिटेशन काम कर रहा है और एक दिन हम निरोगी बन जाएंगे।
तो आपने आज इतनी गहराई में चर्चा की है और बहुत सारी बातें हमें बताई है, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूं।
थैंक यू।
कहते हैं डिजीज माना डिस प्लस ईज, मतलब मुझे इजीनेस महसूस नहीं हो रही। इसका मतलब कि मेरा स्टेट ऑफ माइंड अननेचुरल है एंड अननेचुरल मीन्स कहीं स्ट्रेस में हूँ, कहीं टेंशन में हूँ। और मेडिटेशन ही वो तरीका है, वो प्रक्रिया है जिससे मेरा स्टेट ऑफ माइंड नेचुरल रहने लग जाता है, नेचुरल टिकने लग जाता है। और मेरे शरीर में कोई डिजीज है तो वो ऑटोमेटिकली उस नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड से, उस परमात्मा द्वारा प्राप्त हुई शक्तियों से वो हीलिंग बहुत जल्दी होने लग जाती है। केवल सुनिए नहीं, करके देखिए। ये एपिसोड हम यही समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।